प्रणाम। पुस्तक छठवी, लेक्चर नंबर 17। ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, णमियोणनन्तजिणम् अनन्तनाणेन दिठसौवट्ठम् कम्मपदे सविहत्तिं वोच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 123 पर आ गए हैं। उत्कृष्ट के स्वामित्व की बात चल रही थी, उसमें ओघ से भी हमने देखा और आदेश से भी देखा है, तो लब्धि अपर्याप्त को में हमने कल देखा था। 123 पृष्ठ पर बीच में ही ऊपर से 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16, 17 लाइन वहां से भी पढ़ेंगे हम। तो कहते हैं, पहले गुणित कर्मांश वाले जीव के स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद का उत्कृष्ट संचय क्रम से भोगभूमि में, स्त्रीवेद के लिए पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण भोगभूमि वहां होता है, डेढ़ पल्ले की आयु वाले देवों में पुरुष वेद के लिए, और ईशान स्वर्ग में नपुसक वेद के लिए करावे। बाद में उसे यथाविधि अतिशीघ्र, हम लब्धि अपर्याप्त तीर्यंचों की बात देख रहे थे, तो यथाशीघ्र या यथाक्रम अतिशीघ्र, उसका अर्थ क्या है? देव में से तो कोई डायरेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लब्धि अपर्याप्तकों के क्यों नहीं जाएगा लब्धि अपर्याप्तक में?
वहाँ पे अपर्याप्त नाम कर्म का बंद ही नहीं,
अपर्याप्त नाम कर्म का बंद होता ही नहीं देवों में। एकेंद्रीय का तो हो सकता है, एकेंद्रीय स्थावर आतप का होगा, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का नहीं होता, इसलिए बीच में कोई भव करेंगे। अतिशीघ्र लब्धि अपर्याप्तक तिर्यंच में य के ऊपर रफार देना, उत्पन्न करावे। इस प्रकार लब्धि अपर्याप्तक तिर्यंच के अपने उत्पन्न होने के पहले समय में उत्कृष्ट संचय प्राप्त होता है। किसका? ये वेदों का। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य के यह व्यवस्था अविकल बन जाती है, यानी उसमें भी यही बात हो सकती है, इसलिए इनके सब कर्मों के उत्कृष्ट संचय को लब्धि अपर्याप्तक तिर्यंचों के समान कहा। अब मनुष्य गति में विचार करते हैं, ये विशेषार्थ चल रहे हैं ना, चारों गतियों का विचार चल रहा है यहाँ पर। सातवें नरक से निकला हुआ, इन्हीं करना बराबर, सातवें नरक से निकला हुआ जीव सीधा मनुष्य नहीं हो सकता, ये तो नियम से संगी पंचेन तिर्यंच वो भी हिंसृष्वापद होगा, उसे बीच में तिर्यंचों की संख्यात पर्याय लेना पड़ती है, यानी वो डायरेक्ट मनुष्य नहीं हो सकता है, तो संख्यात पर्याय होगी, इसलिए बारंबार संख्यात भव किए ऐसा लिखा था। इसी कारण सामान्य मनुष्य के मिथ्यात्व 12 कषाय और 6-9 कषायों का उत्कृष्ट संचय लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच के समान कहा, यानी क्या है? उस भव के पहले समय में जो नरक में से निकला है गुणित कर्मांशिक, बीच में संख्यात भव के तिर्यंच के कम से कम, और फिर मनुष्य में आया है। लब्ध्य पर्याप्त तिरंज में भी हमने पहले समय में देखे थे ना, मिथ्या तो 16 कषाय 6 9 कषाय उसका क्या कहते हैं, इसी कारण सामान्य मनुष्य के मिथ्यात्व 12 कषाय और 6 9 कषाय का उत्कृष्ट संचय लब्धि अपर्याप्त तिरंज के समान कहा। लब्धि अपर्याप्त में तो 16 कहा था, 16 कषाय, अब यहाँ 12 कहते, क्यों?
संज्वलन का श्रेणी
क्षपणा में जब उसके संज्वलन का जो उसमें हाँ संक्रमित होता है 9 कषाय का द्रव्य क्रोध में, तो क्रोध का उत्कृष्ट होगा, क्रोध का मान में तो मान का उत्कृष्ट, मान का माया में माया का उत्कृष्ट। ओग से सम्यक्त्व 4 संज्वलन और पुरुष वेद का उत्कृष्ट संचय दर्शन मोनी की क्षपणा, ओग से जो कहा था वही मनुष्यों में भी लागू होगा, क्योंकि सम्यक्त्व का मैक्सिमम यानी उत्कृष्ट संचय कहाँ पर है? दर्शन मोनी की क्षपणा करते हुए जब सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक्त रूप परिणमित होता है पूरा उस समय। 4 संज्वलन का भी हमने देखा क्षपणा में, और पुरुष वेद का उत्कृष्ट संचय वो भी हमने देखा था, वो स्त्री वेद और नपुसक वेद के परमाणु उसमें परिणमित होते तब। दर्शन मोनि की क्षपणा ये क्रम से लेना, सम्यक्त्व के लिए दर्शन मोनि की क्षपणा, 4 संज्वलन के लिए चारित्र मोनि की क्षपणा के समय होता है, पुरुष वेद का भी तो वही, वो भी चारित्र मोनि ही है। हाँ, यह अवस्था मनुष्य के ही होती है, अतः मनुष्य के उक्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट संचय ओघ के समान कहा। ओघ में मनुष्यों की अपेक्षा ही घटित होता है, इसलिए यहाँ ओघ के समान कहा। तथा स्त्रीवेद और नपुसक वेद का उत्कृष्ट संचय क्रमशः भोगभूमि और ईशान स्वर्ग में बतलाया है, तो स्त्रीवेद का उत्कृष्ट संचय करके वो मनुष्य में आना चाहिए, इसलिए वहां से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न होने पर मनुष्य के उक्त कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है। इसी से यानी इसी कारण स्त्रीवेद और नपुसक वेद का उत्कृष्ट संचय प्राप्त करके अनंतर मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होने के होने पर उत्पन्न होने के पहले समय में इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट संचय कहा। स्त्रीवेद का कौन करता है? तो असंख्यात वर्षायुष को पल्ले के असंख्यात विभाग वाले आयु वाले भोग भूमि के तिर्यंच हो या मनुष्य हो,
फिर, हाँ,
फिर वहाँ देव का करके आएंगे,
ये तो भौनक्रिक्ष से भी ले सकते हैं ना,
परंतु मनुष्य में ही अगर लेना है तो स्त्रीवेद का स्वयं असंख्यात वर्षायुष मनुष्य ही कर रहे हैं ना, तो फिर वहां से देव में जाने जाकर मनुष्य में आने की जरूरत भी नहीं है। देखो स्त्रीवेद का उत्कृष्ट संचय ओग में किसको देखा था?
असंख्यात वर्ष के आयु के अंत में होता है ना,
असंख्यात वर्षायुष
तो
देवों के पहले समय में भी देखा था हमने। ओग में देखना, देखो 115 पृष्ठ पर बीच में ही है, स्त्रीवेद की उत्कृष्ट विभक्ति किसके होती है? मिला क्या? 3, 3, 6, 3, 9 लाइन में है 115 पृष्ठ पर, तो किसके होती है? जो गुणित कर्मांश वाला जीव असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य तिरंचों में उत्पन्न होकर पल्ले के असंख्यात वे भाग काल के द्वारा स्त्रीवेद का संचय करता है, उसे स्त्रीवेद की उत्कृष्ट विप्रदेश विभक्ति होती है। तो स्त्रीवेद का तो स्वयं ही करेगा ना वो, भोग भूमि वाली स्त्री ही करेगी वो। स्त्री की जरूरत नहीं, कोई भी स्त्री वेद बांधने वाला चाहिए, भोग भूमि वाला चाहिए मनुष्य। अब आगे नपुसक वेद के लिए तो देवों में, हाँ, ईशान स्वर्ग से जो मनुष्य में आता है तो उसके पहले समय में होगा। सामान्य मनुष्यों के जो व्यवस्था कही है वह मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी के भी अविकल बन जाती है, अतः इनमें सब प्रकृतियों का उत्कृष्ट संचय सामान्य मनुष्य के समान कहा। अब देवगति में विचार करते हैं। मिथ्यात्व 16 कषाय और 6 नौ कषाय, इनका उत्कृष्ट संचय। अभी 16 कषाय को एक साथ लिया क्योंकि यहाँ कोई संज्वलन की क्षपणा नहीं होती। इनका उत्कृष्ट संचय गुणित कर्मांश वाले जीव के सातवें नरक के अंतिम समय में होता है। अब इन कर्मों का सामान्य देवों में उत्कृष्ट संचय प्राप्त करना है, इसलिए ऐसे जीव को देव पर्याय में उत्पन्न कराना चाहिए। पर यह सीधा देव नहीं हो सकता, अतः बीच में तिर्यंश पर्याय के संख्यात भव ग्रहण कराए हैं, मनुष्य के लिए भी कराए थे, लब्धि अपर्याप्त तिर्यंश के लिए भी कराए थे। यही देव अंतर्मूर्त में जब सम्यक्त को प्राप्त होता है, क्या कहा, किसकी बात चल रही है,
सम्यक मिथ्या तो का उत्तर दे सकते।
हाँ, मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व की बात कहाँ है, वो तो हो गई ऊपर। हाँ,
अभी सम्यक मिथ्यात्व,
अभी सम्यक मिथ्यात्व की बात अब बताएंगे। उसका नाम नहीं लिया अभी तक, तो देव पर्याय में उत्पन्न होने के पहले समय में मिथ्यात्व 16 कषाय और 6 नौ कषायों का उत्कृष्ट होगा। अब सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कब होगा, ये गुणित कर्मांश वाला सातवें नरक में मरा, तिर्यंश के संख्यात भव किए, देव में उत्पन्न हुआ, अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त करेगा। कौन सा सम्यक तो होगा, औपशमिक, तो उसके मिथ्यात्व में से
लंबे काल वाला
सम्यक, हाँ, गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक प्रकृति रूप संक्रमण होगा लंबे काल तक, और फिर औपशमिक सम्यक तो के अंत समय में उसको सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य होगा। तो यही देव अंतर्मूर्त में जब सम्यक को प्राप्त होता है तो इसके सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म प्राप्त हो जाता है। कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव देव हो सकता है, तो सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट किसके होगा, कृतकृत्य वेदक वाला देव में उत्पन्न होते ही पहले समय में। नरक में भी यह व्यवस्था घटित करके बतलाए हैं, अतः देव सामान्य के सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश संचय नारकी के समान कहा। नारकी में भी कृतकृत्य वेदक वाले को कहा था, पहले नरक वाले को। स्त्री वेद का उत्कृष्ट संचय भोग भूमि या तिर्यंश के होता है, यह तिर्यंश लिखा है उन्होंने, इसीलिए वो मनुष्य में प्राप्त होने वाला लिया,
तो पर
इन्हें तिर्यंश भोग भूमि वाला तिर्यंश लिया था। अभी तक वो तिर्यंश की बात नहीं लिखी थी कहीं, असंख्यात वर्षायुष्क वाला इतना ही लिखा था। क्या कहते हैं, यहाँ पर फिर आते हैं अपने मूल पॉइंट पर। स्त्री वेद का उत्कृष्ट संचय भोग भूमिया तिर्यंश के होता है। अब इसे देव में प्राप्त करना चाहिए, करना है, अतः यहाँ से देव पर्याय में ले जाना चाहिए। वैसे तो यहाँ के तिर्यंश देव में ही जाएंगे, सब भोग भूमि वाले सब देव में ही जाते हैं, इसीलिए देव पर्याय के प्रथम समय में स्त्री वेद का उत्कृष्ट संचय कहा। पहले देवों के पुरुष वेद का उत्कृष्ट संचय ओप के समान बतलाया है, पर यह व्यवस्था अविकल नहीं बनती। बात यह है कि ओग से पुरुष वेद का उत्कृष्ट संचय क्षपक श्रेणी में होता है और देवों के क्षपक श्रेणी संभव नहीं। यानी ओघ से जो बताया था पुरुष वेद का उत्कृष्ट संचय, वो तो क्षपक श्रेणी में होता है, देवों में तो होता नहीं है। सामान्यतः डेढ़ पल्ले की आयु वाले देव के पुरुष वेद का उत्कृष्ट संचय अंतिम समय में होता है। अतः यहाँ देव के अंतिम समय में पुरुष वेद का उत्कृष्ट संचय कहा। सामान्य देवों की बात है ना, जहां कहीं भी होता होगा। देव के नपुंसक वेद का उत्कृष्ट संचय जो ओघ के समान बतलाया है, सो यह स्पष्ट ही है, क्योंकि वो ईशान स्वर्ग में बतलाया था। कुछ कर्मों के उत्कृष्ट संचय को छोड़कर यह सब व्यवस्था भवनत्रिक में भी, भवनत्रिक के भी बन जाती है। कुछ कर्मों की यह सम्यक प्रकृति का नहीं होगा वहां पर, क्योंकि वहां कृतकृत्य वेदक उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इनके सम्यक और तीन वेदों के सिवा। वेदों का कब लिया था?
पहले समय
में। जिस जिस स्वर्ग में जहां पर होते हैं वहां पर। वेदों का पहले समय में नहीं लिया था? हाँ, आपको स्त्री वेद के लिए तो पहले समय में लिया,
पुरुष वेद के लिए?
हाँ, पुरुष वेद के लिए तो ईशान के अंतिम समय में लिया, सॉरी, पुरुष वेद के लिए वो डेढ़ पल्ले की आयु वाले लिए, और नपुंसक वेद में ईशान का अंतिम समय।
तो पुरुष वेद में डेढ़ पल्ले की आयु भवनत्रिक में हो सकती है?
हाँ, परंतु वहाँ सौधर्म की बताई थी ना।
हाँ, इसीलिए मैंने पूछा।
सौधर्म में बताया था उसको। हाँ। और वो सम्यक तो प्राप्त करके वहाँ भेजा था उसको।
हाँ।
तो फिर वहाँ से एक भव मनुष्य तीर्यंच मनुष्य का करके फिर भवनत्रिक में चला जाएगा। देखो, कुछ भवनत्रिक के भी क्या हुआ, कौन सी लाइन? बराबर है, भवनत्रिक के क्या चाहिए? हाँ, त्रिक है ना, मेरे पुस्तक में भ व न त्रिक के, आपके क्या है, तो क्या चाहिए? भवनत्रिक उसके, कभी नहीं भवनक नहीं कभी होता, भवन भवन वासी से भवन और त्रिक, भवनक त्रिक नहीं होता है, भवनत्रिक, ये बराबर है। तो भवनत्रिक के उत्पन्न होने के पहले समय में तीन वेदों का उत्कृष्ट संचय कहा, यानी वो पहले अपने अपने वेद का जहाँ होता है वहां से यहाँ जन्मने पर पहले समय में होगा। सामान्य देवों के जो व्यवस्था बतलाई है वह सौधर्म और ईशान स्वर्ग में अविकल बन जाती है, क्योंकि सौधर्म ईशान के लिए वो बतलाई थी ना, तो यहाँ तो घटित होती है, इसलिए इन स्थानों में सब प्रकृतियों का उत्कृष्ट संचय सामान्य देवों के समान कहा, क्योंकि यहाँ कृतकृत्य वेदक भी उत्पन्न होते हैं और यहाँ पर वो स्त्री वेद का भी उत्कृष्ट होता है, पुरुष वेद का उत्कृष्ट भी होता है, नपुंसक वेद का भी हो सकता है, तो इसलिए सामान्य देवों में को कथन है वो भवन यहाँ पर सौधर्म ईशान में भी घटित होता है। सनत कुमार से लेकर सहस्रार तक भी यही जानना, किंतु तीन वेदों का कथन भवनत्रिक के समान है, क्योंकि वहां से जो ईशान वाला है या जो सौधर्म वाला है वो फिर नीचे जाएगा, मनुष्य तीर्यंचों में से फिर ऊपर आएगा, तो उसके पहले समय में कहा जाएगा, जैसे भवनत्रिक में हमने घटाया था। बात यह है कि तीन वेदों का उत्कृष्ट संचय सनत कुमार आदि में तो होता नहीं, अतः अपने अपने स्थान में, अपने अपने स्थान से क्या लेना है, स्त्री वेद का वो भोगभूमि वाला तिर्यंच, नपुंसक वेद वाला ईशान स्वर्ग और पुरुष वेद का सौधर्म में डेढ़ पल्ले वाली बताई थी, इनका उत्कृष्ट संचय प्राप्त करा के क्रम से सनत कुमार आदि के में उत्पन्न कराना चाहिए, ऊपर जहाँ जहाँ की बात कहनी हो वहां तक, तब सनत कुमार आदि में तीन वेदों का उत्कृष्ट संचय प्राप्त होगा, वो भी पहले समय में। इसी प्रकार भवनत्रिक में तीन वेदों का उत्कृष्ट संचय प्राप्त होता है, इसलिए हमने देखा था उसमें भी इसी तरह उत्पन्न कराना है। जिन देवों में उत्कृष्ट है वहां से मनुष्य में आएंगे और फिर भवनत्रिक में जाएंगे। इसलिए सनत कुमार आदि में तीन वेदों का भंग भवनत्रिक के समान कहा है। आनतादिक में मनुष्य ही उत्पन्न होता है और वो भी द्रव्यलिंगी, आनत से लेकर ग्रेवेक तक, कल बात आई थी ना, इसमें भी नव ग्रेवेक तक। आनतादिक के लिए कंडीशन नहीं है, ग्रेवेक के लिए कंडीशन है वो, इसमें द्रव्यलिंगी के। इसमें भी नव ग्रेवेक तक द्रव्यलिंगी मुनि भी पैदा हो सकता है। आनतादिक में तो नहीं, वहाँ तो समय दृष्टि श्रावक भी हो जाता है और मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है।
हाँ, तो मिथ्या दृष्टि को उत्कृष्ट होगा ना।
और यहाँ उत्कृष्ट संचय प्राप्त कराना है, अतः आनतादिक में द्रव्यलिंगी मुनि उत्पन्न कराया गया है। अन्य भी उत्पन्न होते हैं परंतु हमें उत्कृष्ट संचय चाहिए। भावलिंगी को उत्पन्न कराएंगे तो उनके तो गुण श्रेणी से निकल जाएगा द्रव्य। द्रव्यलिंग तो कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, यहाँ इसलिए द्रव्यलिंगी को उत्पन्न कराना है कि पांचों गुण स्थान वाला जाएगा तो गुण श्रेणी वाला जाएगा। समय दृष्टि कोई उत्पन्न होता है तो उसका बहुत सा द्रव्य गुण श्रेणी में निकल जाता है निर्जरा रूप से। हमें उत्कृष्ट संचय कराना है इसलिए द्रव्यलिंगी को लिया। मिथ्या दृष्टि लेना है यहाँ पर, हाँ वो पन वो समय दृष्टि जाएगा। पंचम गुण स्थानवर्ती तिरियंच तो आनत प्राण तारण अच्युत तक तो जा सकता है, परंतु फिर भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा हो जाएगी पहले। हमें उत्कृष्ट संचय चाहिए, इसलिए हमने देखा था ना नरक से वो गुणित कर्मांशिक निकला है, फिर वहां से कुछ संख्यात भव करेगा, मनुष्य होगा छोटी आयु वाला, द्रव्यलिंग धारण करेगा, अर्धग्रैवेक में जाएगा। ये बात अपने मूल में पढ़ी थी हमने। द्रव्यलिंगी मर का तो कहीं भी जा सकता है।
कहाँ पे भी जा सकता है,
द्रव्यलिंगी है, भवनत्रिक में भी जा सकता है। और ग्रैवेक में जाने वाले जो द्रव्यलिंगी है उत्कृष्ट सहनन वाले ही जाएंगे। ऊपर के तीन सहनन चाहिए, उत्तम सहनन वाले। ना ना, द्रव्यलिंगी तो कहीं भी जाएंगे ना।
पर यहाँ पे आनतादिक में, आनत ने भी ये द्रव्यलिंगी को बताया,
इसलिए तो बताया कि वहां तो समय दृष्टि जाएंगे, अदरवाइज तो समय दृष्टि जाते तो उनकी गुण श्रेणी निर्जरा हो जाती है पहले ही। तो हमें तो उत्कृष्ट प्रदेश संचय चाहिए। देखो ये बात आनतादिक में द्रव्यलिंगी को उत्पन्न कराया था ना, देखो क्या कहते हैं, जब हमने मूल में पढ़ा था तब। ये तो विशेषार्थ पढ़ रहे देवों में। हाँ, 120 पृष्ठ, 129 नंबर का पॉइंट देखो। आनत से लेकर नव ग्रेवेक पर्यंत मिला क्या मिथ्यात्व? 16 कषाय 6 नौ कषाय की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? जो गुणित कर्मांश वाला जीव सातवें नरक से निकलकर तिर्यंच के संख्यात भव धारण करके वर्ष पृथक्त्व की आयु लेकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। छोटी आयु वाला करना है अभी, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी ऊपर अनतादिक में भेजना है। देखो कैसा जीव है ना, सातवें नरक से निकला है और कुछ ही वर्षों में जा रहा है ऊपर ग्रेवेक में। सबसे जगन्य काल के द्वारा द्रव्यलिंग को धारण करके अंतर्मूर्त तक ठहर कर फिर मरण करके अपने अपने देवों में उत्पन्न हुआ। अपने अपने ने आनत से लेकर नव ग्रेवेक तक सबके लिए द्रव्यलिंगी लिया, क्योंकि यदि पहले सम्यक्वादी उत्पन्न कराते पांचों गुण स्थान वो तो नहीं चले। अब आते 124 पृष्ठ पर। यहाँ उत्कृष्ट संचय प्राप्त कराना है, ये नीचे से तीसरी लाइन में पैराग्राफ के, अतः अनंतादिक में द्रव्यलिंगी मुनि उत्पन्न कराया गया है। शेष कथन सुगम है, किंतु अनुदिश आदि में भावलिंगी ही उत्पन्न होता है, ये तो मुनिराज ही जाते हैं वहां पर, किंतु अधिक निर्जरा न हो जाए इसलिए वर्ष पृथकत्व की पृथकत्व हुआ है, पृथकत्व आयु वाले मनुष्य को ही वहां उत्पन्न कराना चाहिए। यानी ऐसा ही गुणित कर्मांशिक आया है, तीन चार वो के तिर्यंश के मनुष्य में आया है छोटी आयु वाला, और फिर वहां पर उसने 8 साल में संयम भी धारण किया है, सम्यक तो भी प्राप्त किया है, और वर्ष पृथकत्व वाले ही आयु है ना, तो मरकर अनुदिशानोत्तर में उत्पन्न हुआ। अब यहां तक हमने उत्कृष्ट की बात देखी, अब जघन्य की देखेंगे। मिनिमम पॉसिबल प्रदेश किसके और कहाँ होते हैं? मिच्छत्तस्य जघन्य प्रदेश संत कम्मियों को हो दी, मिथ्यात्व के जघन्य प्रदेश सत्कर्म वाला कौन होता है? यह सूत्र सुगम है। अब अभी तक हम गुणित कर्मांशिक को देख रहे थे, अभी क्षपित कर्मांशिक को देखना है। मिनिमम पॉसिबल कर्म के साथ क्षपक श्रेणी चढ़नी चाहिए उसकी, यानी पहले सारा प्रोसेस क्षपित कर्मांशिक का बताएंगे और अंत में जाके श्रेणी चढ़ेंगे, या मिथ्यात्व के बारे में देखना है तो क्षपणा करेंगे, उसके लिए श्रेणी की आवश्यकता नहीं, उसके पहले एक क्षपणा होती है।
तो सूक्ष्म में भी होगा, सूक्ष्म लब्धि पर्याप्तक में भी होगा,
सूक्ष्म लब्धि पर्याप्तक, परंतु उससे भी वो क्षपणा वाला को ले लाए ना, अनुभाग इसका ज्यादा था, प्रदेश नहीं, अनुभाग में हमने उनको याद किया था, सूक्ष्म लब्धि पर्याप्तक वाले के अनुभाग सबसे जघन्य है, क्षपणा वाले से भी जघन्य है। यहाँ प्रदेशों की बात है, जो अंतिम निषेक रहेगा अभी उसका वहां कहेंगे, अब देखेंगे यहाँ क्या कहते हैं। यह सूत्र सुगम है, अब उसका उत्तर दे रहे, बहुत लंबा चौड़ा है। सुहमणिगो देसु कम्मठिदिम अच्छिदाहुओ तथ सव बहुआणी अपजत्त भवग्रहणानी दिहाओ अपजत्त धाओ तप पाओग जहन्यानी जोगठानानी अभिखम गदो। इसका अर्थ देखेंगे हम, क्योंकि अभी इसको सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक में घुमाना है। पहले बादर पृथ्वी कायकों में घुमाया था ना, गुणित कर्मांशिक वाले को, उसमें कर्म स्थिति में से 2000 सागर कम करके घुमाया था, इसको पूरी कर्म स्थिति प्रमाण बता रहे। तदो तप पाओग जहन्याय वड्डी है वड्डी दो, यानी जघन्य वृद्धि से वृद्धित हुआ, एकांत अनुवृद्धि वगैरह जो योग के स्थान होते हैं वहां जघन्य योग से वृद्धि हुई उसकी। जदा जादा आउम बंदी तदा तदा तब पाओग उकस्येषु जोगठानेषु वट्टदी। हमने जब गुणित कर्मांशिक में देखा था आयु के बंध काल में जघन्य योग में रहता ऐसा कहा था, अब यहाँ आयु के बंध काल में उत्कृष्ट योग से रहता है। हेठिल्लीनम ठिदिनम निशयस उक्कस पदेश तप पाओगम उक्कस विसोहिम अभिखम गदो। यानी नीचे के प्रदेश, नीचे के निषेकों में उत्कृष्ट प्रदेश के लिए विशुद्धि अधिक होगी उसकी, तो नीचे के निषेकों में प्रदेश ज्यादा होंगे। संक्लेश के कारण क्या होता है, ऊपर चले जाते हैं, हमने देखे ना ऊपर संक्लेश के कारण प्रदेश ऊपर जाके उत्कर्षण होता रहता है, और विशुद्धि के कारण अपकर्षण होता रहता है। जाधे अभव सिद्धि पाओगम जहन्नंगम कम्मम कदम तदो तसेसु आगदो। यानी अभव्य सिद्धि के प्रायोग्य योग्य मिनिमम पॉसिबल कर्म के किया उसने, यानी प्रदेश, तब अभी त्रसों में उत्पन्न हुआ।
अभव्यों को क्यों लिया?
अभव्यों को लिया क्योंकि भव्यों में तो जघन्य कब होगा, श्रेणी में कहो या क्षपणा में कहो, अब इसलिए अभव्यों के योग्य बताया। यानी यहाँ पॉसिबल जितना कम हो सकता है सूक्ष्म निगोद में उतना केयर दिया उसने। जो क्षपणा नहीं करता है उन सभी जीवों में जगन्य कहाँ है, सूक्ष्म निगोद वाले के हैं। उसने भी वो पंचेंद्रिय में से आया होगा तो सारे घटाते 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 उसने प्रदेश भी कम हो गए उसके। अब त्रसमे आया है, संजमा संजमम संजमम सम्मतम च बहुसो लद्दो, बहुत बार संयमा संयम ग्रहण किया, संयम ग्रहण किया, सम्यक तो ग्रहण किया अनेक बार। चत्तारी वारे कसाय ओसामित्ता, चार बार कषायों की उपशमना की, यानी उपशम श्रेणी चढ़ा। तदो बे छावट्टी सागरोमावनी सम्मतम अणुपालिदूण, अने 266 सागर तक सम्यक का पालन करके। तदो दंशन मोहनियम खबेदी, उसके पश्चात दर्शन मणि का क्षय किया। अपश्चिम खंडयम अवणिज्यम अवणिज्यमाणयम अवणिदम उदयावलियायम जम तम गलमाणम तम गलिदम, यानी वो तो अंतिम स्थिति खंडन होते समय उसको छोड़कर उदयावली में आकर जो निकल जाता है वो सारी निर्जरा तब तक करता रहेगी ना। वो जादे 21 से ठिदिये दू समय कालट ठिदिगम शेषम तादे मिच्छत्तस्य जहन्नयम पदेश संतकम्मम, जब एक निषेक बाकी रहता है, एक स्थिति, और कितने उसकी उसका काल कितना है, दो समय वाली एक स्थिति, क्योंकि उदय वाली जो स्थिति उदय वाला निषेक तो सम्यक प्रकृति का है। जो मिथ्यात्व का अंतिम निषेक है वो एक समय ऊपर स्थित है, इसलिए उसकी स्थिति दो समय कहलाएगी, दो समय वाली एक स्थिति, तब उसका मिनिमम द्रव्य जगन्य में जगन्य। अब इसी का हिंदी पढ़ेंगे। हाँ,
मनुष्य में होगा,
मनुष्य में ही होगा, क्षपणा तो मनुष्य ही करता है ना, और मिथ्यात्व की बात है, सम्यक्त्व की नहीं हो रही है। मिथ्यात्व प्रकृति की है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा मनुष्य ही करता है। अब यहाँ हम इसी का हिंदी पढ़ते, देखो। जो जीव सूक्ष्म निगोदियों में कर्म स्थिति काल तक रहा, वहां उसने अपर्याप्त के भव सबसे अधिक ग्रहण किए और अपर्याप्त का काल दीर्घ रहा, तथा निरंतर अपर्याप्त के योग्य जघन्य योग स्थानों से युक्त रहा। यानी अपर्याप्तकों में जितने जघन्य योग स्थान होते उतने वहां मैक्सिमम यानी अधिक बार रहा। उसके बाद तत्प्रायोग्य जघन्य वृद्धि से बढ़ा। जघन्य वृद्धि से बढ़ा का अर्थ क्या है, कहीं से जन्म लेता है तो पहले समय में उपपाद योग होता है, दूसरे समय से लेकर एकांत अनुवृद्धि, कब तक, शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक, उसके बाद परिणाम योग स्थान होते हैं। तो ये जो वृद्धि है वो जघन्य वृद्धि से वृद्धिगत हुआ। जब जब आयु का बंध किया तब तब तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योग स्थानों में ही बंध किया, इसका भी अभी हमने देखा था। नीचे की स्थिति निषेकों को उत्कृष्ट प्रदेश वाला और निरंतर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्ध को प्राप्त हुआ। यानी नीचे के जो निषेक है उसमें उत्कृष्ट द्रव्य उत्कृष्ट होता है, क्यों होता है, उसका कारणभूत उसकी विशुद्धि ज्यादा होती है, इसलिए। निरंतर तत्प्रायोग्य यानी उसके प्रायोग्य, कौन से, नीचे के निषेकों में अधिक द्रव्य आ जाए उसके तत्प्रायोग्य यानी उसके कारणभूत उत्कृष्ट विशुद्धि को वो प्राप्त होता है, यानी अधिक बार होता है। जब अभव्य के योग्य जघन्य प्रदेश सत्कर्म हुआ, यानी यहाँ मिनिमम पॉसिबल प्रदेश सत्कर्म हुआ, क्षपणा को छोड़कर जो हो सकता है उसकी बात है यहाँ पर, तब त्रसों में आ गया। वहां अभव्य इसलिए लिया कि उसके बाद उसको सम्यक्वादि प्राप्त कराएंगे अनेक बार। अभव्य के योग्य सूक्ष्म निगोद में जितना हो सकता है उसने उतना किया। अब वहां से निकला, त्रसों में आया ना, वहां यानी त्रसों में संयमासंयम संयम और सम्यक्त्व को अनेक बार प्राप्त किया। चार बार कषायों का उपशम करके फिर यानी इतना करने के बाद 132 सागर तक सम्यक्त को पाल कर उसके बाद दर्शन मुनि का क्षपण करता है। ये पहले 132 सागर में नहीं घुमाया उसको, पहले अनेक बार संयमा संयम सम्यक्त संयम सब धारण किया था। क्षपण करने के योग्य अंतिम स्थिति कांडक का यहाँ क रह गया है। क्षपण करने के योग्य जब क्षपणा होती है तो कांडक घात होते हैं, स्थिति कांडक घात अनुभाग भी होता है, परंतु यहाँ स्थिति की बात चलेगी। मिथ्यात्व की जो स्थिति थी उसमें से कांडक घात होते होते उसकी स्थिति घटती चली जाती है और उसी समय संक्रमण भी होता है। मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व में टर्न हो जाएगा, तो अंतिम स्थिति कांडक का क्षपण करके ने उसके अभी सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमा कर उदयावली में जो द्रव्य गल रहा है उसको गलाकर उसी समय जब स्थिति कांडक घात भी हो रहा है तो एक एक समय उदयावली में से भी गल रहा है ने सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आ रहा है। एक एक निषेक, जब एक निषेक की क्या कहते हैं, पहले स्थिति कांड घात किया उस समय जो गल रहा है वो तो गल ही गया, अब स्थिति कांड घात पूरा हो गया, अभी कितने निषेक बाकी रहेंगे? एक आवली में एक समय कम इतने निषेक बाकी रहेंगे, उसकी स्थिति आवली प्रमाण ही कहेगी क्योंकि उदय रूप निषेक है ही नहीं है, तो अंतिम निषेक की स्थिति कितनी आवली प्रमाण है, तो उसमें से एक एक निषेक गलेगा यानी सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आएगा। जब एक निषेक बाकी रहेगा उसकी स्थिति है दो समय की, तब उसमें मिनिमम पॉसिबल द्रव्य है। जब एक निषेक की दो समय प्रमाण स्थिति शेष रहे तब उसके मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है। अब इसमें जो जो शब्द आए हैं, जो जो वाक्य आए हैं, उसका कारण बताएंगे। सूक्ष्म निगोदियों में कर्म स्थिति काल तक रहा यह निर्देश बादर निगोदिया जीवों में उस जीव के रहने का प्रतिषेध करता है, यानी अन्य पर्याय में नहीं रहा, सूक्ष्म निगोद में लब्धि पर्याप्तक में रहा। सूक्ष्म निगोदिया कहा, लब्धि पर्याप्तक नहीं कहा है, क्योंकि पर्याप्तों में भी जाएगा ना, अपर्याप्तों में रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ही है। हाँ, तो सूक्ष्म निगोद में रहा। तथा सूक्ष्म निगोदियों में कर्म स्थिति काल तक रहना निष्फल नहीं है, यानी कर्म स्थिति तक रहने से कुछ न कुछ वहां प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, तो क्या फल मिल रहा है वो देखेंगे। क्योंकि बादर आदि जीवों के योग्य योग से बादर आदि जीवों में योग ज्यादा है और सूक्ष्म निगोदियों में योग कम है, तो बादर आदि जीवों में जितना योग है उस योग से असंख्यात गुणाहीन सूक्ष्म निगोदिया जीव के योग द्वारा, सूक्ष्म निगोदिया में योग कितना है, असंख्यात गुणाहीन है, बादर आदि जीवों की अपेक्षा सूक्ष्म निगोदियों में असंख्यात गुणाहीन योग है, उसके द्वारा थोड़े कर्म प्रदेशों का आगमन होने से इतने काल तक कम प्रदेश आएंगे, योग जितना ज्यादा उतना समय प्रबद्ध बड़ा, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है।
यहाँ पे हमने वो जो देखा था ना, वो जो बादर पीछे सूक्ष्म बादर, तो ये योग सूक्ष्म में कम होता है कि बादर में कम होता है, बस सब और वो सब देखा था ना,
सूक्ष्म में कम होगा
क्योंकि उसके नीचे हमने बादर लिए थे।
हाँ, परंतु ये योग की बात थी, किसकी बात थी, स्थिति की बात थी,
योग की बात थी,
स्थिति की थी, क्योंकि उसके नीचे तो क्षपणा वाला अंत कोड़ा कोड़ी वाला लिया था। मिथ्यात्व के मिथ्यात्व में कितना स्थिति बंद होता है, हाँ, तो पंचेंद्रिय का तो अंत कोड़ा कोड़ी होता है मिनिमम पॉसिबल, ऐसे असंग में कितना होता है, मैक्सिमम 1000 और मिनिमम उसमें कुछ कम, पंचेंद्रिय का संख्यात्व भाग कम। एकेंद्रियों में कितना होता है,
एक सागर
उत्कृष्ट और मिनिमम पल्ले का असंख्या तो भाग कम, उसके आपने वो देखे थे एक इंद्रियों के। यहाँ कर्म प्रदेशों की बात चल रही है।
तो यहाँ पे योग में वो हिसाब से कटौती बढ़ोती नहीं होती है जो हमने वो जो स्थिति,
वहाँ निषेकों की रचना होती है। निषेक स्थिति क्या बतलाती, कितने निषेक, निषेक रचना कितनी हुई। यहाँ क्या बता रहे हैं, प्रदेश, प्रदेशों का ग्रहण कम होगा ना, निषेक भले ज्यादा हो कम हो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हो गया। यहाँ तो प्रदेशों का ग्रहण की बात है। तो जितना बादर आदि जीवों में योग है उससे असंख्यात गुणाहीन योग ये सूक्ष्म निगोदिया में है। तो थोड़े कर्मों प्रदेशों का आगमन होने से क्षपित कर्मांश रूप फल पाया जाता है। क्षपित कर्मांश का अर्थ होता है उसके अधिक से अधिक परमाणु निर्जरा रूप हो जाए, कम रह जाए, संचय कम होना, उसको क्षपित कर्मांशिक कहते हैं। वहां उसने अपर्याप्त के भाव सबसे अधिक ग्रहण किए और अपर्याप्त का काल दीर्घ रहा, ऐसा कहने से कर्म स्थिति काल तक भ्रमण करने वाले सूक्ष्म निगोदिया जीव के भववास के, भवावास के आवास बताए थे ना अलग अलग, तो भवावास, भव आवास यानी भव संबंधी कथन जो होगा उसके कंडीशन जो होंगे, भवावास के भवरूप आवश्यक के साथ साथ अद्धावास काल रूप आवश्यक बतलाया है। क्या कहना चाहते हैं, अपर्याप्त के भव ज्यादा ग्रहण किए एक बात, और दूसरी बात अपर्याप्त का काल दीर्घ रहा। पर्याप्तों में भी जो अपर्याप्त, पर्याप्ति पूरी होने का जो काल है वो भी दीर्घ रहा, अपर्याप्त का काल दीर्घ रहा, यानी इसमें भवावास भी बताया और अद्धावास भी बताया, यानी काल भी बताया और भव भी बताया। अद्धावास क्यों बतलाया, पर्याप्त के योगों से अपर्याप्त के योग असंख्यात गुणहीन होते हैं, अतः उनके द्वारा थोड़े कर्म पुद्गलों का ग्रहण करने के लिए अद्धावास को बतलाया है। ये प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए यहाँ पर। शंका, अपर्याप्त के योग्य जघन्य योग स्थानों से निरंतर युक्त रहा ऐसा क्यों कहा। दीर्घ अपर्याप्त कालों में उत्कृष्ट योग स्थानों को छोड़कर तत्प्रायोग्य जघन्य में ही भ्रमण किया यह बतलाने के लिए कहा है। यानी अपर्याप्त में भी उनके योग्य जघन्य से उत्कृष्ट योग स्थान हो गए तो अपर्याप्तों में भी रहते हुए जघन्य में ज्यादा रहा। अपर्याप्त काल में एकांत अनुवृद्धि नामक योगों के द्वारा वर्धमान जीव का, अपर्याप्त काल में एकांत अनुवृद्धि नामक योग कब बताया था मैंने,
अपर्याप्त पर्याप्त पूरी होने का।
हाँ, जन्म का समय उपपाद वाला उपपाद योग, दूसरे समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक उसको क्या कहेंगे, एकांत अनुवृद्धि योग। एकांत अनुवृद्धि नामक योगों के द्वारा वर्धमान जीव का गुणकार जघन्य होता है और उत्कृष्ट भी होता है। गुणकार यानी अनुवृद्धि हो रही है, एकांत अनुवृद्धि कितने गुणा हो रही है उसका जो गुणकार है वो छोटा भी हो सकता है, अल्प भी हो सकता है, उत्कृष्ट भी हो सकता है। उनमें से अविविक्षित गुणकार का निषेध करने के लिए हमें उत्कृष्ट का निषेध करने के लिए हमें विवक्षित क्या है, जघन्य विवक्षित है और उत्कृष्ट अविवक्षित है, तो अविवक्षित का निषेध करने के लिए उत्कृष्ट का निषेध करने के लिए, अविवक्षित का अर्थ यहाँ पर उत्कृष्ट है, निषेध करने के लिए तत्प्रायोग्य जघन्य वृद्धि से बढ़ा ऐसा कहा है, इससे योगावास बतलाया। देखो भवावास भी बताया, अद्धावास भी बताया, हाँ योगावास सभी हुए ना। हाँ, मोनियों को प्राप्त हो सकने वाले बहुत द्रव्य आयु कर्म को प्राप्त कराने के लिए, जब जब आयु का बंद होता है तो बंटवारा आठ में हो जाता है, तो मोहिनी में द्रव्य कम आएगा। आयु का बंद काल छोटा होगा या उत्कृष्ट योग के साथ अगर आयु का बंद करता है तो मोहिनी में आयु में और ज्यादा बंटवारा होगा, मोहिनी में और कम होगा। इसलिए जब आयु का बंद होता है तो उत्कृष्ट योग से कराएंगे। अभी देखो मोहिनी को प्राप्त हो सकने वाले बहुत द्रव्य आयु कर्म को प्राप्त कराने के लिए, जब जब आयु का बंद किया तब तक तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योग स्थानों में ही बंद किया ऐसा कहा, इससे आयु रूप आवास एक ही आवास हुआ बतलाया। क्षपित कर्मांश वाले जीव में अपनी उत्कर्षित स्थिति की अपेक्षा नीचे की स्थिति में स्थापित द्रव्य ही अधिक है, यह बतलाने के लिए नीचे की स्थिति के निषेकों को उत्कृष्ट प्रदेश वाला किया ऐसा कहा है। इसको उत्कर्षण अपकर्षण जो होता है संक्लेश आवास भी कहा था उसको, यानी विशुद्धि ज्यादा होगी तो नीचे परमाणु ज्यादा आएंगे। शंका, नीचे बहुत कर्म स्कंदों का निक्षेप किस लिए किया जाता है? उसका समाधान, उदय के द्वारा बहुत कर्म पुद्गलों की निर्जरा कराने के लिए किया जाता है। शंका, ऐसा होने पर अर्थात यदि नीचे नीचे बहुत कर्म स्कंदों का निक्षेप किया जाता है तो क्रम वृद्धि के द्वारा जो प्रदेश रचना का गोपुच्छ रूप से अवस्थान बतलाया है वह नहीं रहकर प्रदेश रचना के अस्त व्यस्त होने का प्रसंग प्राप्त होता है। जैसे हमने देखा था ना, ऊपर के से नीचे की ओर देखो तो क्रम वृद्धि यानी एक एक चय बढ़ते हुए होता है, नीचे की ऊपर देखे तो ऐसे कम होते हुए यानी इक्वल होता है ना, प्रोपोर्शनेटली होता है। अब कहेंगे नीचे ही ज्यादा हो ऊपर कम हो तो प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा। समाधान, प्राप्त होता है तो वह इष्ट ही है यानी यही अपेक्षित है, इससे अपकर्षण उत्कर्षण रूप आवास बतला दिया। अभी तक कितने आवास देखे? भवावास देखा, अद्धावास देखा, योगावास देखा, आयु रूप आवास देखा, उत्कर्षण अपकर्षण रूप आवास देखा। अब शंका, निरंतर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धि को प्राप्त हुआ ऐसा क्यों कहा? समाधान, विशुद्धि के द्वारा कर्म प्रदेशों के उपशामनाकरण, निकाचनाकरण और निधत्तीकरण का विनाश कराने के लिए कहा। यानी जो उपशमना होना, यानी कौन सी? वो अंतर वाली उपशमना नहीं, उदय में नहीं आने को ही उपशमना कहते हैं। हमने गुणित कर्मांशिक में देखा था उसको उत्कर्षण करके उसके उपशमना निधत्ति और निकाचित रूप किया जाता है। अब यहाँ उल्टा लेना है, विशुद्धि ज्यादा है तो कर्म प्रदेशों के जो उपशमना निकाचना और निधत्तीपना है उसमें उसका विनाश किया जाता है। दूसरे अर्थ में क्या है? उसका अपकर्षण होकर जल्दी उदय में आ जाए।
सो यहाँ की विशुद्धि भी ये इसका निधत्तीपना और निकाचनापना का,
हाँ यहाँ की विशुद्धि भी एक केंद्रीय की विशुद्धि भी। उसमें भी लिमिट तो है, फिर भी वहाँ ये बातें होती है। हाँ? सूक्ष्म केंद्रीय चल रही ना, सूक्ष्म निगोदिया की बात चल रही, यानी उसकी विशुद्धि से भी उपशामना निदत्ति और निकाचित निका चित्तकरण जो है उसका विनाश होता है। यानी कुछ परमाणु ऐसे पड़े रहते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, विशुद्धि के कारण उनमें भी परिवर्तन होता है। इससे संक्लेश रूप आवास बतलाया, इसी को संक्लेश रूप आवास कहते हैं। संक्लेश रूप आवास में संक्लेश हो या विशुद्धि हो, जो कुछ है वो बताएंगे। इस तरह से हमने छह आवास देखे ना, भवावास, अद्धावास, योगावास, आयु रूप आवास, उत्कर्षण अपकर्षण आवास और संक्लेश आवास। फिर से देखो 125 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन में भवावास बताया, वही उसी लाइन में अद्धावास कह दिया। एक सौ 26 पृष्ठ पर समाधान के पांचवी लाइन में योगावास बताया। उसी पैर उसकी के दो नीचे लाइन नीचे आयुरूप आवास, नीचे से दूसरी लाइन में अपकर्षण उत्कर्षण रूप आवास।
वही हो गया ना संक्लेश आवास?
नहीं, संक्लेश एक कारण है और अपकर्षण उत्कर्षण ये कार्य है। यह लिखा ना, तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धि को प्राप्त हुआ, तो ये भी वहां विशुद्धि उसमें हो रही है और कर्मों में नीचे आने का कार्य हो रहा है। ये दोनों अलग अलग बताए। अब दूसरी तीसरी लाइन में पढ़ रहे, अब अभव्य के योग्य जघन्य प्रदेश सत्कर्म हुआ, तब त्रसों में आ गया, यह बतला हाँ, आ गया। ऐसा कहने से क्षपित कर्मांश का यह लक्षण भव्य और अभव्य जीवों के एक सा है यह बतलाया है। यानी यहाँ तक जो क्षपणा क्षपित कर्मांशिक का लक्षण है वो अभव्यों में भी ऐसा घटित होगा, इतना तो अभव्यों में भी होगा, कर्मों का इतना घटना अभव्यों में भी पाया जाएगा। भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों के समान रूप से होने वाली इस क्षपित क्रिया का काल कर्म स्थिति मात्र ही है। ये जो क्रिया हुई ना क्षपित की, उसका काल कितना है? कर्म स्थिति मात्र। क्योंकि कर्म स्थिति का प्रथम समय प्रबद्ध हमने देखा है। कर्म स्थिति क्यों है? कर्म स्थिति यानी किसी विशिष्ट समय में अधिक से अधिक कर्म स्थिति कितनी बंदी मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो उसका जो प्रथम समय प्रबद्ध है उसकी जो निषेक रचना हुई वो कैसी हुई, उसका अंतिम निषेक कहाँ पड़ा है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर। तो यही बताते हैं कर्म स्थिति का प्रथम समय प्रबद्ध 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण शक्ति रूप स्थिति से अधिक काल तक नहीं ठहर सकता। यानी उस समय जो समय प्रबद्ध बंधा है उसमें जो परमाणुओं में स्थिति कितनी है शक्ति रूप, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, क्या उससे उसका उत्कर्षण होकर अधिक काल ठहर सकता है?
नहीं,
बिल्कुल वही उसका अंतिम समय है खिरने का। हो सकता है पहले भी खिर जावे,
उससे ज्यादा तो टाइम,
परंतु अधिक से अधिक कितने काल तक रहे, उसकी शक्ति स्थिति तो उतनी पड़ी है। नए अगर सागर के बंदे हैं तो सागर में चले जाएंगे, उस सागर से ज्यादा नहीं टिकेंगे, परंतु ये पहले समय में बंधा हुआ समय प्रबद्ध में से कुछ परमाणु रह सकते हैं 70 कोड़ा कोड़ी तक, क्योंकि उसकी शक्ति स्थिति उतनी पड़ी है। यही कहते देखो कि क्षपित क्रिया का काल कर्म स्थिति मात्र ही है, क्योंकि कर्म स्थिति का प्रथम समय प्रबद्ध 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण शक्ति रूप स्थिति से अधिक काल तक नहीं ठहर सकता। अथवा सूक्ष्म निगोदिया जीवों में कर्म स्थिति काल तक रहा, ऐसा सूत्र में निर्देश है। इससे भी सिद्ध है कि क्षपित क्रिया का काल कर्म स्थिति मात्र है। यानी इसको भी क्षपित कर्मांशिक कहेंगे। हाँ, ये भव्य अभव्य दोनों में एक क्षपित क्रिया होती है। सूक्ष्म एकेंद्रियों में इतनी ही कर्म निजरा होती है, उसमें वृद्धि नहीं है, इसलिए सम्यक्त्व आदि गुणों के द्वारा कर्मों की निर्जरा कराने के लिए त्रसों में उत्पन्न कराया है। अभी इतनी स्थिति के द्वारा तो इससे अधिक घट नहीं सकते। अब सम्यक तो प्राप्त करेगा तो गुण श्रेणी होगी, तो उसमें घटने का वहां कार्य चलेगा। शंका, सूक्ष्म निगोदिया जीवों में कर्म स्थिति तक फिर पढ़ती हूँ। सूक्ष्म निगोदिया जीवों में कर्म स्थिति काल तक भ्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण अल्पतर के काल में ही कर्मस्कंधों का क्षय देखा जाता है। यह अल्पतर का काल पल्य का असंख्यातव भाग क्या है?
अरे वो स्थिति काटक काट की अपेक्षा।
हाँ, जो पंचेंद्रियों में से आता है उत्कृष्ट स्थिति लेकर यहाँ पर, तो उसके स्थिति कांडक घात होते रहते हैं। तो पल्य के असंख्यातवे भाग काल तक लगातार वो अल्पतर होगा, क्योंकि है उससे उत्कृष्ट बंध कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बंध तो एकेंद्रिय के योग्य होगा। ख्याल में आती है ना बात? और जो लेके आया है स्थिति, वो तो घटती चली जाएगी, इसलिए यहाँ अल्पतर ही कहा। तो शंकाकार पूछ रहा है, ये सूक्ष्म निगोदिया जीवों में कर्म स्थिति काल तक भ्रमण कराने की जरूरत नहीं है? पल्य के असंख्यातवे भाग काल तक उसका अल्पत्र होता है, उसी के द्वारा कर्म स्कंदों का क्षय देखा जाता है। शायद कहा जाए कि अल्पतर काल कर्म स्थिति प्रमाण है, सो भी नहीं है, क्योंकि अल्पतर काल को कर्म स्थिति प्रमाण बतलाने वाला न तो कोई सूत्र ही पाया जाता है और न कोई व्याख्यान ही पाया जाता है, क्योंकि वो तो पल्ले के असंख्यातवे भाग में ही उसके स्थिति कांड घात होता है, तो विदित ही है उसका समाधान। यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि क्षपित कर्मांश में अल्पतर के काल से भुजगार का काल संख्यात गुणा हीन होने से मिथ्यादृष्टि जीव में क्षपित कर्मांश की क्रिया के कर्म स्थिति काल प्रमाण होने में कोई विरोध नहीं है। हाँ, जो अल्पत्र काल ज्यादा है यानी संख्यात गुणा बड़ा है, और भुजगार का संख्यात गुणा हीन है, किसमें? क्षपित कर्मांश वाले के। तो इसलिए क्षपित कर्मांश की जो क्रिया है वो कर्म स्थिति काल तक चलती रहेगी। आवासनी उसकी जो कंडीशन, उसमें जो कोई कोई बातें बनती है, योगावासनी, योग में क्या लेना, तो क्षपित कर्मांश में जघन्य हो योग होना चाहिए, वो योगावास हुआ। गुणित कर्मांश में योगावास ही कहेंगे, उसकी कंडीशन क्या है?
उत्कृष्ट
योग होना चाहिए। भव के बारे में क्या बताया? भव अपर्याप्तों के पर्याप्तों के, वो किससे कम है किससे ज्यादा है उसको लेना। आयु रूप आवास में क्या लेना है? आयु का बंध क्षपित कर्मांशिक के लिए उत्कृष्ट योग के साथ, वो तो योग में भी चला जाएगा, और आयु रूप में भी वही बताया है कि आयु का बंध कैसे होता है, किस योग में होता है,
उत्कृष्ट काल के साथ,
उत्कृष्ट योग के साथ,
योग के।
किस में? नहीं, आवास इन्हें रहने का काल नहीं है, आवास इन्हें कंडीशन, उसके बारे में क्या क्या कंडीशन हो सकती है,
कंडीशन अप्लाई,
उसको आवश्यक भी कही ना, आवास रूप आवश्यक ऐसा कुछ लिखा था, अवश्य होते उसको आवास भी कहा था। 74 में लिखा पेज है 75। छह बातें आवश्यक बतलाई है। आवश्यक कारण को आवास कहा है, आवास का अर्थ होता है आवश्यक कारण। और उसकी चर्चा पहले भी आई थी पेज 75 पर, आवास का अर्थ आवश्यक कारण दिया था वहां पर। देखो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 127 पृष्ठ पर आए हैं, नीचे की शंका पढ़ेंगे अभी। संयमासंयम, शंकाकार पूछ रहा है संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्व को अनेक बार प्राप्त किया ऐसा क्यों कहा, उसका समाधान। गुणश्रेणी के द्वारा बहुत कर्मों की निचरा कराने के लिए ऐसा कहा, त्रसों में उत्पन्न होने पर बहुत बार संयमा संयम संयम और सम्यक्त्व को प्राप्त किया उसने। यहाँ लब्ध शब्द का अर्थ सम्यक्त्व, संयम और संयम संयमा करना, संयमा संयम को अनेक बार प्राप्त किया ऐसा लेना चाहिए। ये लब्धश उसमें आया होगा प्राकृत में, बहुसो लद्दो 125 पृष्ठ पर, प्राकृत की चौथी लाइन ऊपर से, संयमा संयमम संयमम सम्मतम च बहुसो लद्दो। तो ये लब्ध जो अर्थ है वो उसके उसको प्राप्त हुआ इसका कहना है।
ये क्या है, ये बात बहुत बहुत बार बताया तो सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाता है वापस।
हाँ बारंबार, अभी कर्म स्थिति प्रमाण तो वहाँ घट उसने नहीं, जो नहीं, पहले बांधा था वो तो कर ही दिया है, अब ये जो यहाँ उतना घटा के आया हुआ जीव है, कर्म स्थिति प्रमाण उतना रहा यानी जो पहले समय में बंधा था वो सारा ही नष्ट करके आया है, सूक्ष्म निगोद से आया है तो क्षपित कर्मांश रूप से आया है, पहले कर्म स्थिति प्रमाण है वो सब घटा के आया है, अब ऐसा जीव संयमा संयम प्राप्त करेगा,
वापस मिथ्यात्व में जाएगा वापस संयम।
हाँ बारंबार, तभी तो बारंबार संयमा संयम धारण करेगा, वो भी असंख्यात बार हो सकता है। हाँ 2000 सागर में असंख्यात बार होने में कोई रुकावट नहीं है उसको, और एक आयु पल्ले की होती है, सागरों की होती है, तो एक आयु में ही कितनी बार हो सकता है उसका, पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल में दो बार, यानी दो उपशम समयक के बीच में अंतर कितना है पल्ले का असंख्यात वा भाग।
हाँ। यहाँ पे तो उत्कृष्ट आयु तो पूर्व ही लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये संयम की बात है,
संयम तो 32 बे, अभी 32 बार नहीं कराना क्योंकि आगे उसको 132 सागर तो घबाना है ना सम्यक्त्व के साथ। तो बहुत बार लिया यहाँ पर, यहाँ फुल टोटल उसके पल्ले का संख्या तो भाग इतना ही नहीं लेना है, अनेक बार इतना ही लेना है, वैसे कितने बार हो सकता है मैक्सिमम, पहली बार समय तो होने के बाद मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है, संयमा संयम पल्ले के असंख्यात पे भाग बार, सम्यक तो पल्ले के असंख्यात पे भाग बार, अनंतानुबंधी की विसंयोजना पल्ले के असंख्यात पे भाग बार, और संयम 32 बार और उपशम श्रेणी 4 बार, उसमें से अनेक बार लिखा है यहाँ पर।
यहाँ पे संयम भी अनेक बार लिखा है।
हाँ अनेक बार लिखा है, ये यथा योग्य समझना क्योंकि बाद में 132 सागर तक घूमना है ना उसको सम्यक्त्व के साथ, तो उसमें भी धारण कर सकता है। हाँ देखो यहाँ क्या कहाँ तक आए हम,
ऐसा हो सकता है भावलिंगी मुनि है वो मिथ्यात्व में चला गया और वापस उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया और वापस सातवें गुण स्थान में आ गया।
हाँ, हो सकते
वो भी मैक्सिमम 32 बार ही हो सकता है,
32 बार ही होगा, संयम का ग्रहण करना 32 बार है, 32 भव नहीं बताए 32 बार बताए, एक भव में हो सकता है उसका छूट गया और फिर ग्रहण किया, उसको भी उस बार में गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। देखो 127 के लास्ट दो लाइन पढ़े, वहां से पढ़ेंगे। गुणश्रेणी के द्वारा बहुत कर्मों की निर्जरा कराने के लिए ऐसा कहा है। क्या कहा? कि उसको अनेक बार सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयम को प्राप्त होता है। यहाँ लब्ध शब्द का अर्थ सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम को अनेक बार प्राप्त किया ऐसा लेना चाहिए। यहाँ अनेक बार इस पद से संख्यात और असंख्यात का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संयम के लिए संख्यात कहेंगे और बाकी के लिए असंख्यात कहेंगे। क्योंकि सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम को ग्रहण करने के बार अनंत नहीं होते। कितने होते? असंख्यात ही होते, अनंत नहीं होते। सम्यक्त्व और संयमासंयम को ग्रहण करने के बारों का प्रमाण पल्ले के असंख्यात वे भाग है, लिखा ना यहाँ पर, और संयम को ग्रहण करने के बारों का प्रमाण 32 है, और अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने के बार भी असंख्यात ही है। अर्थात एक जीव मोक्ष जाने तक अधिक से अधिक इतने बार ही सम्यक्त्वादी का धारण और अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर सकता है। तभी करेगा जब बारंबार संयोजन भी हो जाएगा। अतः अनेक बार इस पद से संख्यात और असंख्यात ही ग्रहण करना चाहिए। शंका: वेदना खंड की तरह यहां भी इतने बार ही सम्यक्त्वादी होते हैं ऐसा निर्णय, ये निर्णय हुआ ना, निर्णय करना, ऐसा निर्णय क्यों नहीं कर दिया? तो यहां भी लिखते थे ना पल्ले के असंख्यात विभाग, सेम के लिए 32 बार, ऐसी संख्या क्यों नहीं ली निश्चित रूप से? उसका समाधान तो नहीं, इन्हें ऐसा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम कांडकों में भ्रमण कर चुकने पर, कांडक का अर्थ है जितनी बार हो सकता है उसको कांडक कहा। सम्यक्त्व के लिए कौन सा है? पल्ले का असंख्यात विभाग प्रमाण सम्यक्त्व प्राप्त होने पर अभी वो छूट नहीं सकता है, अभी उसको एक ही रास्ता है मोक्ष का। तो कहते संपूर्ण सम्यक्त्व, संपूर्ण संयम के कांडक और संपूर्ण संयमासंयम के कांडक, यानी जितने मैक्सिमम पॉसिबल है उतने भ्रमण कर चुकने पर मोक्ष गमन को छोड़कर सम्यक्त्व गुण के साथ 132 सागर तक परिभ्रमण नहीं बन सकता। यदि उसने कंप्लीट उसका कोटा कर लिया होता तो अभी इतना, हाँ इतना वो भ्रमण नहीं करता। अतः यहाँ कुछ कम बताने के लिए अनेक बार ऐसा कहा, तो 32 बार नहीं कहेंगे, अनेक बार इतना ही कह देंगे। शंका: चार बार कषायों का उपशमन करे इस प्रकार निर्णय पूर्वक कथन क्यों किया? दूसरों के बारे में तो कह दिया कि अनेक बार, और यहाँ तो बिल्कुल संख्या लिख दी कि चार बार, ऐसा क्यों? अर्थात वही शंकाकार की शंका और चल रही है, जैसे सम्यक्त्वादी के लिए कोई परिमाण न बतलाकर अनेक बार कह दिया, वहां कोई विशिष्ट संख्या नहीं बतलाई, अनेक बार इतना ही कह दिया, वैसे यहां न कहकर चार बार ही क्यों बतलाया? उसका समाधान: चार बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर कषायों का उपशम कर देने वाला असंयमी होकर 132 सागर तक परिभ्रमण करता है, करता है नहीं कर सकता है, भले उसने उपशम श्रेणी चढ़ी है, चार बार उतरा है, फिर भी वो असंयमी होकर 132 सागर तक परिभ्रमण करता है, यह बतलाने के लिए ऐसा कहा है।
तो चार बार जिसने श्रेणी चढ़ी है उसके मैक्सिमम काल 132 सागर ले गया।
अभी उसका तो अर्ध पुद्गल परावर्तन भी हो सकता है।
हो सकता है,
क्यों नहीं हो सकता? और उसको सम्यक तो ही रहना है तो 132 सागर होगा, परंतु उसमें संयम भी होगा बीच बीच में। इस संबंध में उपयोगी गाथाएं ये हैं, ऊपर गाथा बताई है। सम्मतुत्पत्ति विय सावय विरदे अनंत कम्मंसे दंसन मोह खवये कसाय उवसामये उवसंते खवगे अखीण मोहे जिनेयणियमा भवे असंख्ये चा तव विवरीदो कालो संख्ये जगुणाए सेडिये। ये जो स्थान बताए हैं तत्वार सूत्र में भी ऐसा ही सूत्र है, असंख्यात गुणा गुण श्रेणी के ये अलग अलग स्थान बताए हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उसमें गुण श्रेणी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। परंतु इसके विपरीत क्रम से गुण श्रेणी का जो आयाम है वो उल्टे क्रम से है, संख्यात गुणा संख्यात गुणा उल्टे क्रम से, यानी जिनेंद्र भगवान के है उससे संख्यातवा भाग, सॉरी संख्यात गुणा आयाम बड़ा होगा नीचे बारहवें वाले को, उससे नीचे वाले को बड़ा होगा, उससे संयमी को बड़ा, इस तरह से। यानी सबसे बड़ा गुण श्रेणी का आयाम, आयाम यानी अधिक निषेकों में गुण श्रेणी का माल दिया जाएगा। गुण श्रेणी तो कम होगी, गुण श्रेणी में दिया हुआ द्रव्य भी कम होगा, गुण श्रेणी की लंबाई ज्यादा है तो अधिक निषेकों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पर निषेक कम माल आएगा। ऊपर ऊपर क्या होता है, गुण श्रेणी का आयाम घटता है, गुण श्रेणी कम निषेकों की होती है और अपकर्षित द्रव्य बढ़ जाता है, तो गुण श्रेणी का आयाम तो छोटा है पर गुण श्रेणी में जो माल दिया है वो अधिक होती है, तो निर्जरा ज्यादा ज्यादा है, कितनी ज्यादा, असंख्यात गुना ज्यादा। ऐसे ये 10 स्थान बताए हैं, तो उसको देखते हैं। हाँ, तत्वार सूत्र में वहां भी 10 बताए, परंतु जिन में जिनेंद्र भगवान में एक सामान्य केवली और एक समुद्घात केवली, ऐसे दो उसमें भेद करके 11 भी होते हैं। सामान्य केवली से समुद्घात अवस्था में असंख्यात गुणा निर्जरा होती है, इसलिए उसमें दो भेद करने हैं तो ऐसे कर सकते हैं। देखो ये हम देखेंगे अभी इसका अर्थ जो बताया है यहाँ पर, सम्यक्त्व की उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पहले से ही शुरू होती है, अपूर्वकरण से ही, तीन करण परिणामों में अपूर्वकरण से ही गुण श्रेणी रूप रचना और उसकी निर्जरा शुरू होती है।
ये प्रायोगिक जो स्थिति अंतकोड़ा कोड़ी हो जाती है वहाँ पे
उसको निर्जरा नहीं कहते और ना ही गुण श्रेणी होती है,
खाली डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होके
डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें स्थिति घटती है और कुछ नहीं होता है।
नहीं, पर स्थिति घटेगी तो गोपुच्छाकार वो बड़ा बड़ा होगा,
थोड़ा बड़ा होगा, अंत कोड़ा कोड़ी में समा जाएंगे सारे। परंतु गुण श्रेणी का जो कार्य है वो अपूर्वकरण के अलावा कहीं पर नहीं होता, अपूर्वकरण में ही शुरू होता है, फिर अनिवृत्तिकरण में वो चलता रहेगा। यहाँ तो मोहिनी की बात चल रही है, परंतु सभी कर्मों में होते, आयु को छोड़कर सभी कर्मों में गुण श्रेणी रूप से रचना होती है। तो ये कौन कौन से स्थान है, सम्यक्त्व की उत्पत्ति पहला, यानी सबसे थोड़ी निर्जरा इसमें होगी, प्रथमोपशम सम्यक्त्व लेना यहाँ पर। फिर श्रावक यानी पांचवा गुणस्थान वाला, पांचवे गुणस्थान में गुण श्रेणी कॉन्स्टेंट रहती है, चौथे वाले को कॉन्स्टेंट नहीं, इसलिए उसको उत्पत्ति में लिया, सम्यक दृष्टि लिया ऐसा नहीं लिया, अविरत सम्यक तो ऐसा नहीं लिया, सम्यक तो की उत्पत्ति लिखी, यानी प्रथम ऑप्शन सम्यक तो के उत्पत्ति काल में वहां पर असंख्यात गुणा निर्जरा होगी। उसके बाद श्रावक जो है पांचवा गुणस्थान, उसकी गुण श्रेणी कायम रहती है व्यापार धंधा करते समय भी, हाँ सभी कर्मों में गुण श्रेणी रूप। फिर उसके ज्यादा गुण श्रेणी किसके, संयमी की है, मुनिराजों की, छठे सातवें गुणस्थान वाले, मुनिराज की जितनी उससे भी ज्यादा अनंतानुबंधी का विसंयोजक है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना कौन से जीव करते हैं, चारों गति के करते हैं। तो मुनिराज की भी जो गुण श्रेणी है तो विसंयोजना के काल में जो कोई उसका अंतर्मूर्त काल है तो उससे असंख्यात गुणा होती है। दर्शन मोह का क्षपक, क्योंकि ये भी अंतर्मूर्त तक उसकी निर्जरा बहुत ज्यादा हो जाएगी। कषायों का उपशामक, उपशम श्रेणी वाला लेना, आठवा नौवा दसवा वाला लेना, क्योंकि उपशांत मोही को अलग निकाला है, आठवें नौवे दसवें में जितनी उससे भी ग्यारहवें में ज्यादा है, जितनी ग्यारहवें में उससे क्षपक श्रेणी वाला, क्षपक का आठवां नौवां दसवां वो उससे ज्यादा होगा, उसमें भी आठवें से नौवें, अभी उसमें भी तीन भेद कर सकते हैं, आठवें से नौवें में ज्यादा, नौवें से दसवें में ज्यादा। शपक श्रेणी वाला के बाद क्षीण मोही नौवे पॉइंट पर, और जिने जिने ने जिनेन्द्र भगवान दसवें पॉइंट, हाँ क्षीण मोही बारहवा गुणस्थान है, परंतु मैंने पॉइंट दिए हैं नौ और ये दस। वैसे उपशामक में तीन हो जाएंगे उसके, क्षपक के तीन हो जाएंगे, और भी उसको हम लंबा सकते हैं। इनके नियम से, नियम से लिखा है ना, उत्तरोत्तर यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, यानी निर्जरा का प्रमाण असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा से दसवें तक। और काल उससे विपरीत है, काल विपरीत है यानी गुण श्रेणी का जो आयाम है वो छोटा छोटा होता चला जाता है, अर्थात जिन से लगाकर, जिन से लगाकर यानी जिनेन्द्र भगवान से लेकर सम्यक्त की उत्पत्ति तक उल्टे क्रम से उत्तरोत्तर संख्यात गुणा, संख्यात गुणा है क्या गुणश्रेणी का काल या गुणश्रेणी आयाम विशेषार्थ। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के कारण तीन कर्णों के अंतिम समय में स्थित मिथ्यादृष्टि जीव के कर्मों की जो गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य है, क्योंकि ये भी पहले समय, जब से गुणश्रेणी शुरू हो गई पहले समय से दूसरे समय में असंख्यात द्रव्य निर्जरा होता है, तीसरे में असंख्यात, चौथे में असंख्यात, ऐसे अंतिम समय तक, इसलिए अंतिम समय वाला लिया। अंतिम समय में क्यों लिया, उपशम सम्यक्त्व का काल क्यों नहीं लिया? गुण संक्रमण होता है, गुण श्रेणी नहीं होती। उपशम सम्यक्त्व के काल में होती है, पहले होते वो गुण संक्रमण होता है, गुण श्रेणी नहीं होती। गुण श्रेणी निर्जरा ने उदय रूप होकर खिर जाना, अभी वहां उपशम सम्यक्त्व के काल में भी अगर हम उसकी निर्जरा कहेंगे, अन्य कर्मों में होती है परंतु मिथ्यात्व की तो वो तो अंतर पड़ जाता है ना, उसमें मिथ्यात्व के निषेकों में तो अंतर पड़ा है, वहां गुण श्रेणी मिथ्यात्व की नहीं है। हाँ ज्ञानावरण आदि की चल रही है, उसकी तो है, तो इसलिए अंतिम समय में स्थित मिथ्यादृष्टि जीव को लिया। उससे देश संयत के गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है, ये जो हमने 10 पॉइंट लिए थे उसी को हम विशेषार्थ में और बतला रहे हैं। उससे सकल संयमी के गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है, इसी प्रकार उससे अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वाले के, उससे दर्शन मोह का क्षय करने वाले के, उससे कषाय का उपशम करने वाले आठवें नौवें और दसवें गुणस्थान वर्ती के, उससे उससे उपशांत कषाय गुणस्थान वर्ती के ग्यारहवां गुणस्थान, उससे क्षपक श्रेणी के आठवें, जितने ग्यारहवें वाले की है उससे भी क्षपक श्रेणी के आठवें में, उससे नौवें में और उससे दसवें में ज्यादा ज्यादा है, असंख्यात गुणा है। उससे क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती के, उससे स्वस्थान केवली जिन, यहां दोनों लिए देखो, और समुदाहत केवली जिनके गुण श्रेणी निर्जरा का जो द्रव्य है वह असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा है। गुण श्रेणी निर्जरा का कथन पहले कर आए हैं, अर्थात डेढ़ गुणहानि प्रमाण संचित द्रव्य में, हमेशा संचित द्रव्य कितना होता है, डेढ़ गुणहानि मल्टीप्लाइड बाय समय प्रबद्ध, इतना जो संचित द्रव्य है उसमें अपकर्षण भागहार से भाग देकर लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य में एक भाग प्रमाण लब्ध द्रव्य का अपकर्षण होता है। वह अपकर्षित द्रव्य कहाँ कहाँ दिया जाता है? उदयावली में, गुणश्रेणी में और उपरीतन स्थिति में। तो कहते हैं अपकर्षित द्रव्य में, अपकर्षण भागार में जो लब्ध एक भाग आता है, उसमें पल्ले के असंख्यातवे भाग का भाग देकर बहुभाग ऊपर की स्थिति में दो। जितना अपकर्षित हुआ उसके पल्ले के असंख्यातवे भाग से पहले भाग देना, एक भाग नीचे दोनों में जगह मिलकर देना, किसमें? उदयावली और गुणश्रेणी में, और बहुभाग उपरीतन में देना। तो आप कहेंगे उपरीतन में ज्यादा जाएगा, परंतु उपरीतन में तो अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण निषेक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अंत कोड़ाकोड़ी समयों में होगा, और नीचे तो अंतर्मूर्त प्रमाण है, उदयावली तो आवली प्रमाण है और गुणश्रेणी अंतर्मूर्त प्रमाण है। तो उसमें भले एक भाग वहां दिया और असंख्यात बहुभाग वहां दिए, फिर भी यहां दिया जाने वाला द्रव्य ज्यादा है, क्योंकि पर निषेक उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा। तो भी बाकी बचा एक भाग में, यानी पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर बहुभाग उपरीतन स्थिति में दिया, यानी गुणश्रेणी के ऊपर दिया। एक जो भाग बचा उसमें असंख्यात लोक का भाग देकर, अभी जो बचा है उसको असंख्यात लोक का भाग देना, भाग आकर बड़ा है बहुत, बहुभाग को गुणश्रेणी आयाम में दो और अवशेष एक भाग को उदयावली में दो। यानी उदयावली में बहुत छोटा दिया ना, क्योंकि बड़ा भागाकार है, भागाहार बड़ा है, तो उदयावली में एक भाग दिया वो छोटा है, और बाकी उर्वरित बड़ा भाग गुणश्रेणी में दिया। जो द्रव्य उदयावली में दिया गया वह वर्तमान समय से लगाकर एक आवली काल में जो उदयावली के निषेक थे उनके साथ खिर जाता है। उदयावली में दिया जाने वाला त्रावली काल में खिर जाने वाला है। उदयावली के ऊपर अंतर्मूर्त प्रमाण गुणश्रेणी होती है, उसमें दिया हुआ द्रव्य अंतर्मूर्त काल के प्रथमादि समय में जो निषेक पहले से मौजूद थे उनके साथ क्रम से असंख्यात गुना होता हुआ खिरता है। वहां ऑलरेडी पहले से निषेक तो थे ना, उसमें से और एक्स्ट्रा द्रव्य आ गया है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग निषेक समय जो कोई वहां था खिरने वाला, उसमें और असंख्यात गुना द्रव्य आकर मिला है और वो उसके साथ खिर जाएगा। अर्थात ऊपर गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात लोक का भाग देने से जो बहुभाग आया तत्प्रमाण कहा है। सो पूर्व में कहे हुए 11 स्थानों में, ये 11 स्थान बताए ना जिनेन्द्र भगवान के, दो बताए, हाँ, गुणश्रेणी का जो अंतर्मूर्त प्रमाण काल है उसके प्रथम समय से लेकर अंतिम समय पर्यंत उस द्रव्य की प्रति समय असंख्यात गुणी निषेक रचना की जाती है। असंख्यात गुणी पहले समय में जितना द्रव्य दिया, दूसरे समय में असंख्यात गुणा, तीसरे निषेक में, समय की बात बाद में करेंगे। एक ही समय में जितना द्रव्य गुणश्रेणी में दिया, पहले निषेक में जितना दिया, दूसरे निषेक में असंख्यात गुना, तीसरे निषेक में असंख्यात गुना, चौथे निषेक में असंख्यात गुना, ये तो पहले समय की बात हुई। दूसरे समय में उससे भी असंख्यात गुना द्रव्य नीचे आता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होगा, असंख्यात गुना असंख्यात गुना। तो प्रति समय इतना आता रहता है, तो जब वो उदय रूप हो जाएंगे तो कितना सारा द्रव्य की निर्जरा हो जाती है। इस प्रकार जिस जिस समय में जितना जितना द्रव्य स्थापित किया जाता है उतना उतना द्रव्य उस समय में निर्जरा को प्राप्त होता है। इस तरह गुणश्रेणी के काल में दिया हुआ द्रव्य प्रति समय असंख्यात गुना होकर निर्जीर्ण होता है। यह गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य पूर्व में कहे गए 11 स्थानों में असंख्यात गुना है। इसका कारण यह है, इन स्थानों में विशुद्धता अधिक अधिक है, अतः पूर्व स्थान में जो अपकर्षण भागार का प्रमाण होता है उससे आगे के स्थान में अपकर्षण भागार असंख्यात्वे भाग होता जाता है। क्या कहना चाहते हैं? अपकर्षण महाकार सर्वत्र समान नहीं है। सम्यक्त्व की उत्पत्ति में वहां पर जो अपकर्षण भागार होगा, अब श्रावक के बारे में जो गुण श्रेणी में भागार का अपकर्षित द्रव्य का प्रमाण है, भागहार असंख्यात भाग होता है, भागहार छोटा होता है तो द्रव्य अधिक अपकर्षित होता है। आगे मुनियों के लिए और अधिक द्रव्य अपकर्षित होगा, क्यों? उनका भागहार और छोटा है। सो जितना भागहार घटता है उतना ही लब्ध राशि का प्रमाण अधिक अधिक होता जाता है। उसके अधिक होने से गुण श्रेणी का द्रव्य भी क्रम से असंख्यात गुना होता जाता है, किंतु उत्तरोत्तर गुण श्रेणी का काल विपरीत है, अनेक कम निषेक बनेंगे उसके। काल विपरीत है का अर्थ छोटा है, आयाम छोटा है, अर्थात समुद्घात गत जिनके गुण श्रेणी के काल से स्वस्थान जिनकी गुण श्रेणी का काल संख्यात गुना है, उससे क्षीण मुह का संख्यात गुना है। इसी प्रकार क्रम से पीछे की ओर संख्यात गुना जानना, किंतु सामान्य से सबकी गुण श्रेणी का काल अंतर्मूर्त ही है, क्योंकि हर एक वह गुण श्रेणी कितनी है तो अंतर्मूर्त काल तक की है। जैसे मुनियों में भी अंतर्मूर्त है, तो वो अंतर्मूर्त होने के बाद क्या होगा? वो माल तो उदयावली में चला जाएगा और ऊपरतन स्थिति के निषेक गुण श्रेणी रूप से हो जाएंगे, इसलिए वो गुण श्रेणी कॉन्स्टेंट बनी रहती है, उतनी की उतनी उनकी बनी रहेगी। अब यहीं रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे